तो कोई जुबान जो भी बोलता है वो अपनी जुबान को आला नहीं समझेगा और किसी दूसरी जुबान को कमतर नहीं समझेगा। देर इज अ वेरी प्रैक्टिकल फैक्टर जिसको मुफस्सरीन ने अल्लामाहुल बयान में मेंशन किया है, किसी का मजाक ना उड़ाया जाए उसकी जुबान की वजह से। और ये इसकी आजकल हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे लिए ट्रंप को रेसिस्ट कहना बहुत आसान है। एक ट्रंप जो आईने में नजर आते हैं, एसेंस में, फिजिकली नहीं, उसको भी जरा कभी ब्लेम किया करें। रेसिस्ट मेंटेलिटी, उनको देखा था कैसे बोल रही थी, और बच्चे एक दूसरे के एक्सेंट का कितना मजाक उड़ाते हैं। तो बच्चों को सिखाया जाता है, बिल्कुल जैसे अल्लाह ने इंसान को बहुत से कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, माँ होते हुए औलाद को बहुत सी चीजें कॉन्स्टेंटली हमें सिखानी होती हैं। लैंग्वेजेस की वजह से कोई किसी को सुपीरियर और कोई किसी को इंफीरियर ना समझे। अल्लामाहुल बयान का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये, ताकि हम सब जुबानों की इज्जत करें। मूसा अलैहि सलाम के लिए कहा जाता है, मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल से थे, लेकिन मूसा अलैहि सलाम की परवरिश कहाँ हुई थी? फिरौन के महल में। तो जो फिरौन के महल में जुबान बोली जाती थी वो इजिप्शियन लैंग्वेज थी, उस जमाने में वो जुबान इलीट की जुबान थी। मूसा अलैहि सलाम जब आए और उनको अल्लाह ताला की तरफ से रिसालत मिली, तो उनको रिसालत दोनों तरफ दी गई। आपका क्या ख्याल है, मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल की हिब्रू लैंग्वेज बोलते थे या इजिप्शियन लैंग्वेज बोलते थे? जब आपने बचपन में जुबान सीखी तो आपने इजिप्शियन लैंग्वेज सीखी थी, और फिर जब आपने बनी इसराइलियों में अपना दावत का काम शुरू किया तो आप हिब्रू लैंग्वेज में करते थे। अब आप क्या कहेंगे, उसी दौर में वापस चले जाएं? जस्ट एक सेकंड के लिए, मूसा अलैहि सलाम थे तो बनी इसराइल से, तो उनकी असल जुबान तो थी हिब्रू लैंग्वेज। हम कहेंगे वो डिक्रेडिट लोगों की जुबान थी, इसलिए कि इलीट की जुबान इजिप्शियन लैंग्वेज थी आले फिरौन की। वहां तो हम कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, जो जुबान वो बोलते थे वो अल्लाह के नबी थे, वो सब एक्सेप्टेबल है। लेकिन प्रैक्टिकली आज हमारे माशरे में इस जुबानों की बेसिस के ऊपर हम बहुत एक दूसरे पर लान तान, एक दूसरे को बुरा भला कहना और एक दूसरे का मजाक उड़ाना करते हैं। याद रखें, अल्लाह ने जुबानों को डिग्निफाइड किया है और अल्लाह ने तमाम जुबानें बनाई हैं। हमने तमाम जुबानों की रिस्पेक्ट करनी है। किसी भी जुबान का मजाक उड़ाना मुफस्सरीन के मुताबिक ईमान की कमजोरी की अलामत है। अल्लामाहुल बयान हमने अब सीख लिया, आज के बाद हम किसी लैंग्वेज का मजाक नहीं उड़ाएंगे। बाज़ औक़ात आप किसी लैंग्वेज को किसी को बोलते हुए सुनते हैं और आप हंस रहे होते हैं साथ साथ। दिस इज वेरी डिग्रेडिंग, वेरी डिग्रेडिंग। याद रखें, बॉटम लाइन से नीचे गिर जाता है इंसान जब किसी दूसरे इंसान का ये सोच के मजाक उड़ाता है, मैं सुपीरियर वो इंफीरियर। आप अपनी बॉटम लाइन से, अपनी फितरा से नीचे गिर जाते हैं, और ये आपने और मैंने नहीं करना। तो ये एक यूनिक स्टाइल है जो आपको यहां नजर आ रहा है अल्लामाहुल बयान के अंदर, कि अल्लाह ताला ने दो अल्फाज की आयात में कई एंगल्स को कवर कर लिया है, कई तरह से अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया। सूरतुर रहमान की अब जो आगे आयत शुरू हो रही है, आयत नंबर 5, इससे ऑनवर्ड आपको एक सूरत का मिजाज नजर आएगा। सूरत में आपको कॉन्स्टेंटली ड्यूअलिटी मिलेगी। ड्यूअलिटी, जिसको आप अरबी जुबान में तस्निया के नाम से जानते हैं, उर्दू में और अंग्रेजी में ड्यूल का नंबर नहीं इस्तेमाल होता। उर्दू में आप अगर क्वांटिटीज देखते हैं तो आपको एक मिलता है वाहिद, एक मिलता है जमा। अंग्रेजी में आपको एक मिलता है सिंगुलर, और अगर एक से ज्यादा होंगे तो आप कहते हैं प्लोरल। अरबी जुबान में देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। अरबी जुबान में अगर आप क्वांटिटी देखते हैं किसी चीज की, एक चीज होगी तो आप कहते हैं कि यहां पर सिंगुलर है, वाहिद है। दो होंगे तो आप कहते हैं ये तस्निया है, ये ड्यूल है। और 2+ ऑनवर्ड आप जमा इस्तेमाल करते हैं। आपको आयत नंबर 5 ऑनवर्ड सूरतुर रहमान में अब ये एक ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट जो है और प्रोमिनेंटली नजर आएगा। किस तरह से? आयत नंबर 5 शुरू होती है, अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। अल्लाह ताला ने सूरज और चांद को एक हिसाब किताब के साथ बांध कर रखा हुआ है। आपको सूरतुर रहमान इस पॉइंट से, देखें जो पहला इंट्रोडक्शन चल रहा था पहली 4 आयतों का, उसमें अल्लाह ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया एज अ रहमान, और फिर अल्लाह ने अपने रहमान होने की मैनिफेस्टेशन को 3 चीजों से वाजे किया। अल्लाह का इंसान को कलाम सिखाना, तमाम इंसानों को कुरान सिखाना, अल्लाह का इंसान को सुप्रीम क्रिएशन बनाना, और अल्लाह का इंसान को यूनिक फैक्टर में बयान सिखाना। अब मजीद अर रहमान कैसे रहमान है? याद रखे हमने शान नजूल में बात की थी कि कुरैश के लोग अर रहमान के बारे में सवाल करते थे। कुरैश के लोग मक्की दौर से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कॉन्स्टेंटली मोजज़े मांग रहे थे कि कुछ यूनिक करके दिखाएं, कुछ अलग से चीज बताएं, ये कलाम तो हमें जो है ये किसी का सिखाया हुआ लगता है। तो अब आपको यहां से जो मिजाज मिलेगा सूरत का, उसमें अल्लाह ताला तमाम कुरैश के लोगों को और बाद में आने वाले हर इंसान को एक हकीकत बता रहे हैं, मुजजा देखना है तो मुजजा तो तुम्हारे सर पर दिन रात मौजूद होता है। सर उठाकर देखो, दिन में सूरज को और रात में चांद को। सूरज और चांद एक हिसाब के साथ हैं, एक बेहतरीन कैलकुलेशन के साथ हैं। तो आपको यहां से जो अंदाज मिलेगा वो नजर आएगा रहमान की मोहब्बत एज अ होल ऑन द कायनात। अल्लाह ने कैसे हर इंसान के लिए इन नेमतों को, इन मोजज़ों को प्रोवाइड किया हुआ है, और अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का मर्सी, अल्लाह का रहमान होना आपको हर आयत में नजर आएगा अगर आपने अल्लाह की मोहब्बत के लेंस वाले ग्लासेस पहन लिया। चाहे आप जहन्नुम का जिक्र भी पढ़ेंगी, आपको तब भी अल्लाह की मोहब्बत नजर आएगी, और रहमान जो अनइमेजिनेबल मोहब्बत करता है। सूरज और चांद को पेयर करके बात की गई है। बजाहिर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे सब्जेक्ट बदल गया? किसी को लग रहा है? बजाहिर लग रहा है ना कि सब्जेक्ट बदल गया? बिल्कुल लगता है। अगेन जब आप रहमान की डेप्थ में जाएंगे और आप शान नजूल को जहन में रखेंगे, तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से, उनके बयान के जरिए कुरैश को बता दिया कि इंसान को पैदा किया गया रहमान की मोहब्बत, और उसको बयान सिखाकर कुरान दिया गया। तुम्हें मुआजा चाहिए, देखो मुआजा सूरज और चांद की शक्ल में। दिस इज द कनेक्शन। डिसकनेक्शन नहीं है, देर इज अ कनेक्शन अगर आप इसको रहमान के लेंस से देखेंगे। अल्लाह ने बेहतरीन रब्त इसके अंदर रखा है। मुशरिकीने मक्का ने कुरान से बढ़कर मुजजा मांगा था कि मोहम्मद कुछ ऐसा करो जो अनयूजल हो। जैसे अगर आप में से जिन लोगों ने सीरत पढ़ी है, मुशरिकीन आते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे, मोहम्मद ऐसा करो हमारे आबा को जिंदा कर दो। हमारे आबा सच कहते थे, अगर वो कहेंगे कि तुम सच कह रहे हो तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। ये सब वो अंदाज हैं जो अंदाज 1450 साल पुराने नहीं हैं। ये अंदाज आपको आज भी मिलता है, और इन अंदाज के अंदर, बात के अंदर जो मुआजा मांगने की तलकीन होती है वो बात मानने के लिए नहीं होती, वो बहस बराए बहस के लिए होती है। ये भी अल्लाह के रसूल से ऐसे ही कहा करते थे कि जब तुम मुआजा दिखाओगे तब हम तुम्हारी बात मानेंगे। ये कुरान जो है ये हमारे लिए काफी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस कौम को वाजे कर दिया कि अल्लाह का उसूल है, अल्लाह मोजजा नहीं दिखाता जब तक कि अल्लाह किसी कौम पर हुज्जत तमाम ना करते। हम जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से एक पूरी कौम को किसी भी अजाब के जरिए वाइप आउट करने की सुन्नत अल्लाह ने खत्म कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसी सजा, कोई ऐसा अजाब नहीं आएगा जिसके बाद पूरी उम्मत जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी जाए। पॉकेट्स में सजा आती रहेगी, इंडिविजुअल आजमाइशें आती रहेंगी, इंडिविजुअल इम्तिहान आते रहेंगे, कुछ नेचुरल क्लैमिटीज आती रहेंगी, लेकिन अल्लाह ऐसा अजाब, ऐसी सजा नहीं भेजेगा कि अल्लाह ताला पूरी कौम को खत्म कर दे। देखिए मोजज़े का उसूल क्या हो रहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पहले की उम्मतों में। मोजज़े का रूल ये होता था कि जिस कौम को रसूल अपनी तरफ से तालीम का पूरा हक अदा कर दिया करते थे, वही की पूरी तालीम पहुंचा दिया करते थे, जिनको मानना होता था वो मान जाते थे। फिर एक फाइनल अथॉरिटी के तौर पर अल्लाह की तरफ से मोजज़ा दिया जाता था, ताकि अब जो मासेस रह गए हैं उसमें से जो फाइनल निकल सकते हैं इस मोजज़े को देखने के बाद वो निकल आए। तो जब मोजज़ा दिखाया जाता था, जिन चंद लोगों को ईमान लाना होता था वो ईमान ले आते थे, उसके बाद बाकी कौम को क्या किया जाता था जो ईमान नहीं लाते थे? हलाक कर दिया जाता था। तो ये अल्लाह की कुरैश पर रहमत थी कि अल्लाह ताला ने कुरैश पर कोई ऐसा मोजज़ा नाजिल नहीं किया कि अगर वो फिर ना मानते तो उनको हलाक कर दिया जाता। तो अल्लाह ने इनके साथ मोजज़ा कैसा किया कि अल्लाह ने इनको कायनात के मोजज़ों पर फोकस करने को कहा। यह है रहमान की शाने रहमानी। मांग रहे थे मोजज़ा, अल्लाह चाहता तो मोजज़ा भेज देता, लेकिन फिर इनको मोहलत मिलती, फिर इनको मोहलत नहीं मिलती। तो अल्लाह की शाने रहमानी आपको आयत नंबर 5 में भी नजर आ रही है कि अल्लाह ने इनको किस मोजज़े की तरफ फोकस करवाया कि देखो अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल की किताब आखिरी किताब है, तुम अल्लाह के रसूल के सामने उनके फिजिकल जिंदगी में आखिरी उम्मत हो। कुरैश वो लोग थे जो अपने सर की आंखों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे। तो अल्लाह चाहता था इस उम्मत में से जितना खैर निकल सकता है निकल आए, जितने ईमान लाने वाले निकल सकते हैं उतने ईमान लाने वाले निकल आए। अगर अल्लाह गुस्से में, अगर अल्लाह अपने अदल के ऊपर इनके रिडिक्यूल करने पर, इनके मजाक उड़ाने पर कुरैश को खत्म कर देता, तो आखिर हम भी तो जानते हैं कि फतेह मक्का के मौके पर बहुत से लोग ईमान लेकर आए थे। अबू जहल का बेटा इकरमा रदी अल्लाहु अन, जो फतेह मक्का के बाद ईमान लेकर आए, अबू सुफियान ईमान लेकर आए, खालिद इब्न वलीद ईमान लेकर आए। तो ये वो खैर था जो कुरैश में से निकला था, और अल्लाह ताला ने यहां पर भी इनको मोजज़ा दिया कि देखो तुम्हारे लिए मोजज़े जो हैं वो आसपास मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने मखलूकात की तरफ तवज्जो करने का कहा, इंसान बनाया, तुम्हें मोजज़ा देखना है, अपने इर्द गिर्द चलती हुई कायनात को देखो। इंसान का साइज कायनात के मुकाबले में एक चींटी के बराबर भी नहीं है। तो इंसान उन चीजों की तरफ, उन ऑब्जेक्ट्स की तरफ नजर करे जो इंसान से साइज में बहुत बड़े हैं, सेलेस्टियल स्काई की तरफ देखे, ताकि कुरान एज़ा ज़िक्रा उसको याद आ जाए। अल्लाह ने वार्निंग के तौर पर यहां पर इस चीज को मेंशन किया है। अल्लाह ने सूरज और चांद की बात की कि अल्लाह ने इनको एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ रखा है। एक इसमें फैक्टर यह है, जैसे रोज सुबह सूरज निकलता है, जैसे चांद अपने महीने की तमाम कैलकुलेशंस को फॉलो करता है, और कई हजार साल से यह हो रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान तुम्हें लेकर आकर बता रहे हैं, जिस कयामत का जिक्र कर रहे हैं, जब वो कयामत आएगी तो ये सूरज और चांद का हिसाब टूट जाएगा। ये रिमाइंडर था जो सूरतुर रहमान से पहले की तमाम रेवलेशंस में दिया जा रहा था। तो अल्लाह ने यहां पर अलर्ट किया, तुम्हारी जिंदगी ए इंसान लिमिटेड है, तुम मखलूक हो, तुमको फना है, अल्लाह ने तुमको बेहतरीन अकल के साथ पैदा किया है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अपनी अकल का करते हुए कुरान को एज अ रिमाइंडर लो। और अल्लाह ने एज अ रिमाइंडर ही आसमान की तरफ सर उठाने की बात की है। देखिए इंसान रिमाइंडर से फायदा उठाता है, कॉकरोच को रिमाइंडर से फायदा होता है? फर्ज करें यहां कोई कॉकरोच हो, नहीं है, नहीं, कुर्सी पर मत खड़ी हो जाइएगा। फर्ज करें किसी बिल्डिंग में इंसान भी हैं और कॉकरोच भी हैं, बिल्डिंग में फायर अलार्म बजता है, बाहर कौन भागेगा? कॉकरोच नहीं, नहीं, कॉकरोच नहीं भागेगा, कॉकरोच नहीं बैठा रहेगा। अब आप कहें प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा, आप करके देख लें। इंसान को रिमाइंडर्स फायदा देते हैं, इंसान में गौर व फिक्र की सलाहियत है। अल्लाह ने आपको और मुझे लिटरली, कभी आप अपनी जिंदगी में गौर व फिक्र करें तो आपको लगता है कि आप एक एरियल व्यू से अगर कभी आप जहाज से दुनिया को देखे नीचे की, या आप हेलीकॉप्टर से दुनिया को देखे नीचे की, और आप उस वक्त देखें तो आपको लगता है लिटरली अल्लाह ताला बंदों को बिल्कुल जैसे आप किसी डॉल हाउस को नहीं ट्रीट कर रहे होते हैं, अल्लाह ने भी हम बंदों को इसी तरह इस दुनिया में रखा है। अल्लाह की किस कदर बड़ी शान और उसकी मोहब्बत का एंगल कि उसने हमें उठाकर यहां बिठा दिया, या कुरान के सामने बिठा दिया, या हमें थोड़ा सा गौर व फिक्र करने का एंगल दे दिया। जरा सा हम आसमान की तरफ देखें तो ये जो रोज सूरज निकलता है, एक दिन आएगा ये सूरज नहीं निकलेगा। अल्लाह रिमाइंडर देना चाह रहा है, एक दिन आएगा ये सूरज जो है ये रुक जाएगा। और जिस तरह जानवर जो है वो अलार्म्स के ऊपर और रिमाइंडर्स के ऊपर कोई फायदा नहीं उठाते, बिल्कुल इसी तरह नाफरमान लोग कुरान की बात को सुनते रहते हैं, रिमाइंडर्स को सुनते रहते हैं, लाइफस्टाइल्स में कोई तब्दीली लेकर नहीं आते। सूरज और चांद का आज स्टेबल होना इस बात की गारंटी नहीं है कि ये हमेशा स्टेबल रहेगा। असाआ कायम होगी, कयामत आएगी और फिर एक एक करके दुनिया के तमाम सिस्टम्स को खत्म कर दिया जाएगा। तो बता दिया गया कि अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने मोजजा मांगने पर सिर्फ आसमान की तरफ सर करके देखने को कहा है। अल्लाह की पावर हर दिन हम देखते हैं, हर दिन हमें अल्लाह का एक एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर जो है वो मोजजा नजर आता है। अगर आप सूरज के बारे में देखें तो जैसे अभी बाहर से जब आप लोग अंदर आए होंगे उस टाइम पर धूप बहुत तेज थी। बाज दफा आप कितने आराम से कह देते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, कितनी तेज धूप निकली हुई है, बहुत सख्त गर्मी है, होता है ना। अगर आप अपनी अप्रोच को बदलें, अगर ये सूरज गर्म ना हो, और जिस तरह से अल्लाह ने इस बॉल को बनाया है जिसका टेम्परेचर कितना है, चलिए कल मैं आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर फर्दर बात करूंगी, मेरा टाइम हो गया है। लेकिन एक चीज अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा कि जब आइंदा कभी गर्मी में गर्मी लगे, नहीं बोलना बहुत गर्मी हो रही है, ये भी तरबियत है। आपने बॉटम लाइन से ऊपर जाना है, बॉटम लाइन याद है ना, बॉटम लाइन इज द बेयर मिनिमम, फराइज पर रहने वाला इंसान। अब बाहर जाएंगे, फर्ज करें एक दिन यहां एसी नहीं चलते, कि कितनी गर्मी में बिठाया हुआ था हमें, एसी भी नहीं चल रहे थे। सबर, कुरान की क्लास में सबर सीखना है, सबर आएगा, अकल इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। अकल ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो जबान से बयान से अल्फाज अदा होंगे वो कंट्रोल होंगे। अल्लाह ताला हमें बयान की बेहतरीन सिफत अता फरमाए, अल्लाह हमें अपनी फितरत से हमेशा ऊपर बढ़ने की, एहसान के लेवल पर बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए इस कायनात की निशानियों को ऐसा रिमाइंडर बना दे कि हम अपनी जिंदगी में हमेशा अल्लाह के फरमा बरदार रहें। अल्लाह हमें ऐसे हाल में मौत दे कि हम अपने अंजाम से राजी हों और अल्लाह हमसे राजी हो। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह ताला तमाम बच्चों के जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं उनके बेहतरीन पेपर्स करवाए और उनको बेहतरीन कामयाबी अता फरमाए, और अल्लाह उन सबको अपनी फितरत पर कायम रहने वाला बनाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।